ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के परिणाम पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह के साथ आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला की विशेष बातचीत।
आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
अभ्यर्थी नीट परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि एनटीए ने बार बार कहा है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी रही है। अभ्यर्थियों को आप किस तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया है?
जो नीट की परीक्षा 5 मई 2024 को पूरे देश में संपन्न हुई थी, और ये परीक्षा जो है बहुत बड़ी परीक्षा होती है, लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स इसमें रजिस्टर हुए थे और करीब 4,750 सेंटर्स में 571 सिटीज में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। तो एक तरीके से देखें तो एक कॉम्पिटेटिव जो है सबसे बड़ी परीक्षा है जो एक सिंगल शिफ्ट में होती है, और काफी सारे इसमें करीब 2,70,000 एग्जाम फंक्शनरी लगे थे पूरे एग्जाम को कराने के लिए। इस स्केल का जो है ये परीक्षा आयोजित की गई थी, और पूरे देश में 5 तारीख को परीक्षा आयोजित की गई थी, और सब जगह जो है बड़े स्मूथली इसको कंडक्ट किया गया, और उसके हम लोगों ने सीसीटीवी सब रिकॉर्डिंग भी कराते हैं, बायोमेट्रिक भी करते हैं और फ्रिस्किंग करते हैं, तो पूरा एक उसका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से करते हैं। और जितने भी ये स्कूल्स में परीक्षा आयोजित होती है ओएमआर बेस्ड, जहां पे सेंटर सुपरिंटेंडेंट होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, तो ये पूरा उनके उसमें इन्विजिलेशन की व्यवस्था होती है, सिटी कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारी रहती है, तो वो लोग इसको पूरा सुपरवाइज करते हैं
जी।
तो जो परीक्षा हुई थी उसमें सभी जगह से रिपोर्ट हमने सब दी, सब अच्छे से हुआ। कुछ जगह से इशू आया था जो एग्जाम होने के बाद में, कि वहां पे कुछ वजहों से कुछ पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ, या दो तीन जगह से ओएमआर फटी मिली, उसको चेंज करने में कुछ टाइम लॉस हुआ, तो उसके कुछ इशूज आए थे। उसके अलावा सब जो है उसके लिए हमने अलग उपाय किए, और परीक्षा पूरे देश में पारदर्शी तरीके से हुई और कहीं पे उसकी इंटीग्रिटी कम्प्रोमाइज नहीं हुई
जी। आपने कहा कि परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया है, और पुख्ता व्यवस्था की गई थी किसी भी तरह से कि पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न हो। एक और सवाल जो इस बार उठ रहा है वो है ग्रेस अंक दिए जाने का, तो इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। 1500 से ज्यादा, ऐसा कहा जा रहा है एनटीए की ओर से भी, कि ऐसे अभ्यर्थी 1500 से ज्यादा थे जिन्हें ग्रेस अंक दिए गए, जिससे उनकी रैंकिंग पर असर पड़ा। ये ग्रेस अंक किन्हें और किस आधार पर दिए गए? साथ ही ग्रेस अंकों को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं उनका आप किस प्रकार जवाब देना चाहेंगे?
तो इसमें जो बच्चों का, जैसे मैंने बताया कि कुछ सेंटर पे बच्चों का समय का नुकसान हुआ, 3 घंटे 20 मिनट मिलना चाहिए था, उनको किसी वजह से नहीं मिला उस सेंटर के मैनेजमेंट के इश्यूज की वजह से। तो जब उन्होंने, कुछ बच्चे हाईकोर्ट गए, कुछ हमको डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन दिए, और फिर उनका हमने यहाँ पे ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाई कि जो बच्चों का ये नुकसान हुआ है वो कमेटी उनको देखेगी। तो उन्होंने जो डिमांड किया था, दो तरीके की डिमांड थी, या तो रिटेस्ट कराया जाए या फिर उनका जो समय का नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए। तो कमेटी ने जब विचार किया उस पर, तो पुराने कुछ उदाहरण थे जो अलग एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे थे, कि कैसे जो है अगर कोई एग्जाम में टाइम लॉस होता है तो उसको किस तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है। तो कमेटी ने उसको विचार किया और उसके ऊपर एक अपनी अनुशंसाएं दी, जिसके आधार पे उनके कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए। अब जो है उसके बाद ये विषय आया कि इनके जो कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए इसके बारे में काफी लोगों के मन में संशय हुआ, कुछ बच्चे जो है टॉप उसमें पहुंच गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर एनटीए ने डिसाइड किया कि इस टॉपिक को, जो ये करीब 1563 बच्चे हैं और 6 सेंटर पे, इनकी वजह से पूरे 23 लाख के बच्चों के मन में संशय हो रहा है, जहां पे परीक्षा सब पूरी अच्छे सुचारू तरीके से हुई है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो 1563 बच्चों को जो कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं, इस सब्जेक्ट को रिविजिट किया जाए। तो हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, और ये कमेटी जो है इसको रिविजिट करेगी और अपनी जो रिकमेंडेशन है, अनुशंसाएं हैं, वो 7 दिन में देगी, और उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे कि इसको आगे जो है इसका निराकरण कैसे किया जाए।
यानी जैसे ही कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए, उसका अपने एनटीए ने त्वरित उसका समाधान किया और एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के बारे में अगर आप थोड़ा और विस्तार से बता सकें कि उसने क्या अनुशंसा की और ग्रेस अंक फिर से अलॉट किए गए।
जी, जो पहले कमेटी थी उन्होंने जो ग्रेस मार्क्स की अनुशंसाएं की थी, जिसके आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, तो ये कमेटी जो है, ये जो हमने हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, उस कॉन्सेप्ट को और उसको पूरा उसका परीक्षण करेगी और क्या अच्छा जो सोल्यूशन उसका हो सकता है वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी और उसके आधार पे हम लोग निर्णय लेंगे, जिससे ये 1563 बच्चे हैं इनका भी कोई नुकसान नहीं हो और जो 23 लाख बच्चे जो पूरे परीक्षा में भाग लिए हैं उनके मन में भी कोई संशय न रहे कि उनको किसी तरीके का इससे नुकसान होगा, या तो दोनों पक्ष जो है जिनका टाइम लॉस हुआ है और जो बाकी बच्चे हैं सबके लिए जस्ट एंड फेयर एक डिसीजन हो जाए, सोल्यूशन निकलना, ये हमारी कोशिश है।
जी बिल्कुल। इस बार की परीक्षा में एक और मामला जो सामने आ रहा है वो है 67 अभ्यर्थियों के 720 में से 720 अंक आना। इसमें एक ही परीक्षा केंद्र के 6 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। ग्रेस अंक दिए जाने से भी क्या अभ्यर्थियों के नंबर बढ़कर शत प्रतिशत हो गए, और क्या अगर ग्रेस अंक के बगैर टॉपर्स की संख्या वाकई इतनी बड़ी हो सकती है? नीट परीक्षा में इसकी संभावना कितनी होती है?
इसमें कई सारे विषय हैं, जो 6 बच्चों के जिनके ग्रेस अंक देके जो टॉपर में बन गए हैं ये तो हम रिविजिट कर रहे हैं। इस बार कई हमने परीक्षाओं में बदलाव किए थे। एक हमने पिछले साल ही 2023 में एक हमने सिलेबस जो इस साल नीट का है उसको बदलाव किया था। पिछले 3-4 सालों से कोविड की वजह से कई ज्यादातर बोर्डों ने अपने सिलेबस कम कर दिया था और नीट में सिलेबस ज्यादा होता था, तो हम लोगों ने ये किया जो नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ भी चर्चा की और राज्य के बोर्ड के साथ भी की कि जब बच्चे 11-12 में जो टॉपिक नहीं पढ़ते हैं उनको क्यों पूछा जाए, तो उसके बेसिस पे कोर्स से करीब 15-20% टॉपिक जो है डिलीट हो गए कि जो बोर्ड में नहीं पढ़ते हैं उन पे सवाल न पूछे जाएं। तो उससे क्या होता है कि आप कम टॉपिक पढ़ने हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ जाता है कि अच्छे से बच्चे तैयारी कर लेते हैं। फिर यह होता है कि इस बार क्या हुआ कि पिछले साल से 16% पंजीयन ज्यादा हुआ, ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठे, और उसके अलावा हर साल जो परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल जो पेपर आता है वो बदलता रहता है थोड़ा बहुत जो है, तो कई सारे कारण होते हैं जिससे बच्चों के मार्क्स हर साल कट ऑफ हो चाहे टॉपर हो कम ज्यादा होते रहते हैं। इस साल जो टॉपर्स हैं वो पूरे कंट्री से है, झज्जर वाला इशू छोड़ दीजिए जिसको हम रिविजिट करने जा रहे हैं, उसके अलावा जो टॉपर हैं वो पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग शहरों से हैं, किसी सेंटर से कोई बहुत ज्यादा कोई टॉपर नहीं है या इस तरीके का कोई एबरेशन नहीं है।
आपने कट ऑफ की बात की, हर साल क्या कट ऑफ रहता था और इस बार की कट ऑफ में क्या कोई अंतर आया है?
इस साल जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है, अगर पिछले हम 5 साल में देखें तो कभी 147 रहा है, कभी 117 रहा है और इस साल 164 रहा है। तो ये चीज ऐसी है कि परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, और क्योंकि 50th percentile तक जो बच्चे आते हैं उनका अनरिजर्व में हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है, तो जो मार्क्स अगर आप पिछले सालों में भी देखें तो कभी 117 भी कट ऑफ मार्क्स रहे, कभी 147 भी रहे और इस साल 164 है। तो जैसे मैंने कहा कि जो पेपर के डिफिकल्टी लेवल और दूसरे पैरामीटर्स हैं उसके साथ कट ऑफ बदलता रहता है, और ये केवल नीट का नहीं, ये सभी एग्जाम में इस तरीके के इशू आते हैं कि जो पेपर बनता है उसका लेवल कैसा है और उस साल कितने बच्चे बैठ रहे हैं, इन सब पैरामीटर्स पे डिसाइड होता है।
अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उनकी शिकायतों को नहीं सुना जा रहा है, इस पर एनटीए के महानिदेशक के
हमारे पास जितनी मेल्स आ रही हैं, जितने आ रहे हैं उनको सबको हम परीक्षण करते हैं, उनकी सबकी करते हैं और संज्ञान में लेते हैं। अब एनटीए मैं कहूंगा कि एक सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट एग्जाम कंडक्शन बॉडी है, अगर आप देखें तो हम उनको जो है आंसर की चैलेंज करते हैं कि उन्होंने जो ओएमआर दी, या अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं तो उन्होंने जो अपने रेस्पॉन्स मार्क किए सब उनको दिखाते हैं, और उसके बेसिस से बच्चे चैलेंज करते हैं कि ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हम करते हैं, और जब परीक्षा परिणाम भी हम जारी करते हैं तो बहुत डिटेल प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिससे उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हमारे पास बहुत पारदर्शी तरीके से हम लोग एग्जाम करते हैं, और जो उनके समस्याएं हैं हम उनको एक तरीके से खुद ही अपनी तरफ से बताते हैं, मतलब उनके जो विषय हैं उनकी आंसर की, बेसिकली बच्चे ने जो आंसर मार्क किया वो उसको देखना चाहता है तो वो हम उसको दिखाते हैं, उसके बेसिस पे चैलेंज आते हैं, उसका भी हम लोग पूरा विचार करके परीक्षण करके एक्सपर्ट्स से उसकी राय लेके उस पर निर्णय लिया जाता है। तो हर लेवल पे जो है पारदर्शिता है।
तो आपने कहा कि बच्चों को आप एक और मौका देते हैं कि उन्हें किसी तरीके कोई शंका ना हो कि वो ओएमआर को सीधे चैलेंज कर सकें, और ऐसा ही चैलेंज इस बार हुआ। वो क्या एक सवाल पे ही दो आंसर ऑप्शन सही दिए गए या फिर कुछ और सवाल भी थे?
ये हर साल होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो चैलेंज होते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस के विकल्प बदल जाते हैं या एक के बजाय दो विकल्प सही होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है और इस साल भी ये हुआ। इस साल मतलब पूरे पेपर में केवल एक ही क्वेश्चन प्रभावित हुआ जिसमें एक विकल्प से दो विकल्प हुए, और उसका कारण भी हमने दिया कि जो एक्सपर्ट ने दिया तो उसकी वजह से जो है दो विकल्प सही हो गए, तो जो जिन्होंने दूसरा भी विकल्प दिया था उनको भी मार्क्स मिले, उससे टॉपर की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो सभी एग्जाम कंडक्शन बॉडी जो है करती है।
अब जो चार सदस्यीय समिति बनी है जो कि ग्रेस अंकों का पुनर्मूल्यांकन करेगी, वो किन किन मुद्दों को देखेगी?
उसके सामने ये मुद्दा है कि जो जिस विषय को लेके जो कैंडिडेट्स में एक संशय हो रहा था कि जो टाइम लॉस को लेके कंपनसेशन दिया गया उसको लेके जो है जो संशय था लोगों में, उस विषय को वो देखेगी और उसका क्या आउटकम हो सकता है, उस पर क्या अच्छा चीज हो सकती है जिससे जिन बच्चों का टाइम लॉस हुआ और जिनका जो बाकी 23 लाख बच्चे हैं उन दोनों के लिए जस्ट एंड फेयर सोल्यूशन हो जाए। इस विषय पे ये कमेटी बनाई गई है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर देगी।
अभ्यर्थियों के बीच एक और शंका है कि अगर कमेटी का फैसला जो भी आता है तो क्या उससे परीक्षा परिणाम पर कोई असर पड़ सकता है, उनकी रैंकिंग पर कोई असर पड़ सकता है?
जो 23 लाख बच्चे हैं उनकी रैंकिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो ये 1500 बच्चे हैं इन्हीं की रैंकिंग पे प्रभाव पड़ेगा। तो जब इनकी रैंकिंग पे पड़ेगा तो उनकी जो रैंकिंग पे माइनर प्रभाव जो है पड़ेगा, तो कोई इससे मेजर जो है कोई रैंकिंग में चेंज नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो सबके सामने पारदर्शी तरीके से रखा जाएगा।
एक और सवाल उठाया जा रहा है कि पहले परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था लेकिन इसे 4 जून को मतगणना वाले विशेष दिन ही जारी कर दिया गया है, इस पर एनटीए क्या कहेंगे?
एनटीए बहुत सारे एग्जाम कराता है और जब हमारा रिजल्ट तैयार हो जाता है, जैसे हम आंसर की चैलेंज करते हैं, इस बार जैसे आंसर की चैलेंज हुआ उसके 3 से 4-5 दिन में रिजल्ट तैयार हो जाता है, 3-5-7 दिन में। तो जैसे तैयार हो जाता है तो फिर हम रिजल्ट को परिणाम को घोषित कर देते हैं, और हमारे इतने एग्जाम होते हैं उसके बाद भी उसके अगले 2 दिनों में भी हमने परिणाम घोषित किए, तो इतने सभी एग्जाम रहते हैं कि अगर हम सारे एग्जाम को अगर रोक के रखेंगे तो फिर मतलब उनके आगे के प्रोसेस में डिले होती है। तो जैसे तैयारी रिजल्ट की हो जाती है वो घोषित करते हैं, और पहले भी हमने जैसे जेई का रिजल्ट भी था, जेई सेशन 1 का हमने 11 दिन में डिक्लेयर किया, कंप्यूटर बेस्ड था, दूसरे सेशन में जिसमें पहले का मिला के जारी करते हैं वो 15 दिन में किया, और जो उसकी तिथि थी उससे पहले हमने डिक्लेयर किया। तो ये सभी एग्जाम जो बॉडीज हैं मतलब जब रिजल्ट तैयार हो जाता है तो डिक्लेयर कर देते हैं, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है, और इसको 4 जून या 14 जून से नहीं जोड़ना चाहिए। और हमने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, जब जो हमारी इन्फॉर्मेशन से ही पब्लिक हमसे क्वेश्चन भी पूछ रही है तो हम पारदर्शी तरीके से रिजल्ट को घोषित किए।
एक और सवाल सभी बच्चों के मन में है कि क्योंकि अब अंकों का रिवीजन होगा, कुछ बच्चों का ही हालांकि होगा वो, तो क्या जो पूरी एडमिशन प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है या नहीं?
अभी जो ये समिति की रिकमेंडेशन आ जाएगी 7 दिन में, उससे उसके बेसिस पे जो है हम लोग त्वरित निर्णय लेके, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो एडमिशन की प्रक्रिया रहती है उसके पहले हम लोग सारी प्रक्रियाएं पूरा करके दे दें जिससे एडमिशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से समय से हो।
और अंत में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें और किसी तरह की कोई अपने मन में दुविधा ना रखें? जी
बिल्कुल, जो है बच्चों को अपनी पढ़ाई और अपने उस पर फोकस करना चाहिए, और जो उनके परिणाम आए हैं उसके हिसाब से उनको आइडिया लगता है आगे के लिए बढ़ना चाहिए। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं, और भ्रामक विषयों में न पढ़ें और अच्छे से अपनी पढ़ाई और आगे के लिए तैयारी करें, उनके लिए मेरी बेस्ट विशेष।
आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के परिणाम पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह के साथ आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289094044।